आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। मीटिंग के दौरान भारत की अगली नस्ल की जीएसटी इस्लाहात पर पेशरफ्त का इम्कान है। वजारत दाखिला ने कहा है कि जमीन या फिजाई रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले नेपाल और भूटान के शहरियों को अब पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वॉन्ग 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1400 के पार हो गई है। भारत ने फिजाई रास्ते से 21 टन राहत साजो सामान काबुल भेजा है। और एशिया कप हॉकी के सुपर फोर मरहले के मुकाबले आज से बिहार के राजगीर में खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस 2 रोजा मीटिंग की सदारत करेंगी। मीटिंग के दौरान भारत की अगली नस्ल की जीएसटी इस्लाहात पर पेशरफ्त का इम्कान है, जिनमें टैक्स शरहों को हकीकी शक्ल देना और तकमील को आसान बनाना शामिल है। इस साल यौम आजादी की अपनी तकरीर के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी से मुल्क को हो रहे फायदे पर रोशनी डाली थी। जनाब मोदी ने जीएसटी के तहत अगली नस्ल के इस्लाहात की अहमियत को उजागर किया था, जिनसे आम आदमी, किसान, मुतवस्सित तबके और एमएसएमईज को राहत मिलेगी।
पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं, ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 में सीईओज की गोलमेज में शिरकत करेंगे। सीईओ गोलमेज सनती रहनुमाओं को यकजा करेगी ताकि वो भारत के सेमीकंडक्टर इको निज़ाम और उसकी नमो और तरक्की पर तबादला ख्याल कर सकें। गोलमेज मीटिंग के दौरान जनाब मोदी दुनिया भर के सीईओ से तबादला ख्याल करेंगे। 3 रोजा सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का कल नई दिल्ली के यशोभूमि में जनाब मोदी के हाथों इफ्तिताह किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत को आलमी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भरोसेमंद साझेदार के तौर पर मकाम दिलाना है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के दौरान वजीर आजम ने आलमी सेमीकंडक्टर मार्केट में नुमाया किरदार अदा करने की भारत की सलाहियत पर जोर दिया। आने वाले सालों में आलमी सेमीकंडक्टर मार्केट का हजम $1 ट्रिलियन से तजावुज कर जाने का इम्कान है।
आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है।
जनाब मोदी ने सरमायाकारों के लिए तरीक़ाकार को आसान बनाने, कागजी कार्रवाई को कम करने और हर तरह से तैयार बुनियादी ढांचा फराहम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। वजीर आजम ने भारत की सेमीकंडक्टर डिजाइन महारत को फरोग देने और इख्तराई इको निज़ाम को तकवीत देने की खातिर नौजवान कारोबारियों और स्टार्टअप से आगे आने की अपील भी की। जमीनी या फिजाई रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले नेपाल और भूटान के शहरियों को अब पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की शहरियों के इस्तेसना से मुतालिक ऑर्डर 2025 को नोटिफाई किया है, जिसके तहत कुछ मखसूस जुमरों के अफराद या कैरियर्स को मजाज पासपोर्ट, सफरी दस्तावेजात और वीजा से बड़े पैमाने पर मुस्तस्ना करार दिया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की अकलियती बिरादरी जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई जो मजहबी बुनियादों पर जुल्म सितम के खदशे की वजह से भारत में 31 दिसंबर 2024 से पहले दाखिल हुए हैं और उनके दस्तावेजात बशमूल पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेजात की मुदत ख़त्म हो गई है, उन्हें मजाज पासपोर्ट और वीज़ा रखने की सख्ती से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वॉन्ग कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। जनाब वॉन्ग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत का 3 रोजा दौरा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कल 2 तरफा बातचीत का प्रोग्राम है। इस दौरान सिंगापुर के वजीर आजम صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ وزیراعظم وانگ کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور سنگاپور اپنے سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل کر رہے ہیں اور اس شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے دونوں ملکوں کے عزم کی یقین دہانی کر رہے ہیں۔ اس دوران خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کل نئی دلی میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران تجارت اور سرمایہ کاری، فن ٹیک، مہارت کے فروغ، پائیداریت، صحت دیکھ بھال اور کنیکٹیویٹی جیسے اہم شعبوں میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ میٹنگ کے دوران دونوں فریق ان شعبوں میں اپنے تعاون کو مزید وسعت دینے پر رضامند ہو گئے۔ بھوٹان کے وزیر اعظم داشو شیرنگ ٹوبگے کل سے بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق نئی دلی پہنچنے سے پہلے بھوٹان کے وزیر اعظم گیا اور ایودھیا میں منعقد کی جانے والی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ قومی راجدھانی کے اپنے دورے میں بھوٹان کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے مشرقی حصے میں آئے تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1400 کے پار ہو گئی ہے۔ ہزاروں افراد زخمی ہیں اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ افغانستان میں اتوار کے روز ریختر پیمان پر 6 کی شدت کا زبردست زلزلہ آیا تھا جس کا مرکز مشرقی افغانستان کے ننگرہار صوبے کی راجدھانی جلال آباد سے 27 کلومیٹر دور شمال مشرق میں زمین میں 8 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ زلزلے کے بعد کئی مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ مرنے والوں کی تعداد مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس دوران بھارت نے افغانستان میں آئے تباہ کن زلزلے کے بعد افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد بھیجی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ 21 ٹن کا راحت ساز و سامان کل فضائی راستے سے روانہ کیا گیا۔ ان میں کمبل، خیمے، صفائی ستھرائی کے کٹس، پانی ذخیرہ کرنے کے ٹینک، جنریٹر، باورچی خانے کے برتن، واٹر پیوریفائرز، بستر، ضروری دوائیں، ویل چیئرز، ہینڈ سینیٹائزرز، پانی کو صاف کرنے والی گولیاں، او آر ایس اور میڈیکل آلات شامل ہیں۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ بھارت زمینی صورتحال پر نگرانی جاری رکھے گا اور آنے والے دنوں میں مزید انسانی امداد بھیجی جائے گی۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے سال 2070 تک بھارت کو کاربن اخراج سے پاک ملک بنانے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ پائیداریت سے متعلق 20ویں عالمی چوٹی کانفرنس سے کل نئی دلی میں خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ مستقبل کی نسلوں کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ جناب گڈکری نے مزید کہا کہ کسی بھی ملک یا سماج کے لیے اخلاقیات، معاشیات اور حیاتیات کے ساتھ ساتھ ماحولیات بھی نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔
کسی بھی دیش میں اور سوسائٹی میں 3 امپورٹنٹ ایز ویری امپورٹنٹ ہے، ایتھکس، اکانومی اینڈ ایکولوجی اینڈ انوائرمنٹ۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں سوبھاوک روپ سے شاشوت، ٹکاؤ اور پریاون پورک وکاس سے ہماری لیے سب سے بڑا مشن ہے۔ 2070 تک پردھان منتری جی نے ایک لکشیہ نشچت کیا ہے، 1.0 جو کاربن نیوٹرل دیش بننے کی جو ہم سب کی ایک من کی بھاونا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 2070 تک کا لکشیہ رکھا ہے۔
انتخابی کمیشن نے 1 سے زیادہ حلقوں میں ووٹر کے طور پر رجسٹریشن رکھنے پر کانگریس لیڈر پون کھیڑا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نئی دلی کے الیکٹورل رجسٹریشن افسر نے پون کھیڑا سے 8 ستمبر کی صبح 11 بجے تک اپنا جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ جناب پون کھیڑا کو جنگ پورا اور نئی دلی دونوں اسمبلی حلقوں میں ووٹر کے طور پر رجسٹر ہونے کی بنیاد پر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب حالیہ دہائیوں کے بڑے اور شدید سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ سیلاب کے سبب 30 سے زیادہ انسانی جانیں تلف ہو چکی ہیں جبکہ 3,54,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ریاست بھر میں 1,48,000 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کچھ مقامات پر کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ان میں پہلے سے بری طرح متاثرہ علاقے بھی شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں ہو رہی لگاتار بارش، دریاؤں میں آئی طغیانی اور باندھوں سے منصوبہ بند طریقے سے پانی چھوڑے جانے کے سبب ریاست کے سبھی 23 ضلع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ گرداسپور سب سے زیادہ متاثرہ ضلع ہے۔ اس کے علاوہ امرتسر، فیروزپور، فاضلکا اور پٹھانکوٹ اضلاع بھی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب کے خزانے، بازیابت کاری اور آفات سے نمٹنے کے وزیر ہردیپ سنگھ منڈیان نے بروقت امداد کی فراہمی، بڑے پیمانے پر لوگوں کو نکالنے اور کنبوں کی بازیابت کاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کرائی ہے۔ इस दौरान हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने मदद का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि हरियाणा बोहरान की इस घड़ी में पंजाब के साथ खड़ा है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
हिमाचल प्रदेश में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों में आज कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
रियासत में लगातार बारिश के सबब मुख्तलिफ जगहों से जमीनी तूदे खिसकने के वाकयात की खबरें मौसूल हो रही हैं। मंडी जिले में सुंदरनगर सब डिवीजन के जंगम बाग इलाके में कल शाम अचानक एक पहाड़ी से मलबा गिरने के सबब दो मकानात तबाह हो गए। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बचाव कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। रियासत के कई हिस्सों में जमीनी तूदे खिसकने के सबब 4 कौमी शाहराहें और 1334 सड़कें बंद हैं। महकमे मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और शिमला जिलों में सभी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शिमला से प्रभा शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
वहीं जम्मू कश्मीर में कल रात से जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर पानी भरने, ट्रैफिक जाम और रोजाना सफर करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिनाब, तवी, रावी और उज समेत जम्मू खित्ते के तमाम दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। महकमा मौसमियात ने जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ जिलों में आज दोपहर तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। शदीद बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमोदरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
मकामी महकमा मौसमियात ने मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के मुख्तलिफ अजला में आज दोपहर शदीद बारिश की पेशगोई की है। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने, अचानक सैलाब आने और जमीनी तोदे खिसकने जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दोपहर बाद से बादल छाए रहने और कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी अजला में कई मकामात पर औसत बारिश या गरज चमक का इम्कान है। डोडा, सांबा, राजौरी, पूंछ, रामबन और किश्तवाड़ अजला में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। आम लोगों को नदी नालों और नदी किनारों, नीज कमजोर ढांचों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। खराब मौसमी हालात के सबब आज श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र यात्रा आज 9वें दिन भी मुअत्तल रहेगी। इस दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मोटर गाड़ियों की आमोदरफ्त लगातार दूसरे दिन भी मुअत्तल रहेगी। इसके अलावा आज जम्मू खित्ते के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे और आज होने वाले सभी इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
एशिया कप हॉकी के सुपर फोर मरहले के मैच आज से बिहार के राजगीर में खेले जाएंगे। भारत, चीन, मलेशिया और जनूबी कोरिया इस राउंड के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। सुपर फोर राउंड में ये सभी टीमें एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेंगी। सुपर फोर की सरकर्दा दो टीमें फाइनल मैच खेलेंगी। बाकी दो टीमें दर्जाबंदी में तीसरे या चौथे मुकाम के लिए आमने सामने होंगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बिला रोक टोक सफर जारी। वजीर आजम मोदी ने कहा, अब हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को फरोग देने की सम्त में तेजी से काम किया गया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, सिंगापुर के वजीर आजम का दौरे हिंद, दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, बारिश और सैलाब से पंजाब समेत कई रियासतों में तबाही। रोजनामा इनकलाब समेत कई दीगर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए बिहार में बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह किए जाने से मुतालिक खबरों को अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है।
और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। मीटिंग के दौरान भारत की अगली नस्ल की जीएसटी इस्लाहात पर पेशरफ्त का इम्कान है। वजारत दाखला ने कहा है कि जमीनी या फिजाई रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले नेपाल और भूटान के शहरियों को अब पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1400 के पार हो गई है। भारत ने फिजाई रास्ते से 21 टन राहत साजो सामान काबुल भेजा है। और एशिया कप हॉकी के सुपर फोर मरहले के मुकाबले आज से बिहार के राजगीर में खेले जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।